आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम से किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर चर्चा कर पश्चिम एशिया में तनाव और नागरिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ग्वालियर से लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी की और केंद्र सरकार ने देश में गैस और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार होने का भरोसा देते हुए जनता से इनके सही उपयोग की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बोडो प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
हमने जो भी वादे किए थे वो एक के बाद एक तेज गति से पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडो लैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री कल सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्किन के साथ पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की मृत्यु तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा का निर्बाध परिवहन भारत की उच्च प्राथमिकता बना हुआ है। उन्होंने शांति और स्थिरता के लिए ईरान की प्रतिबद्धता व्यक्त की और संवाद तथा राजनयिक माध्यमों से समाधान का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने महिला विद्यार्थियों और कर्मियों के लिए मासिक धर्म अवकाश संबंधी राष्ट्रव्यापी नीति की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस तरह से कोई भी उन्हें नौकरियां नहीं देगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस तरह के प्रावधान जानबूझकर महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव से जुड़ी पहले की धारणाओं को और मजबूत करेंगे। भोपाल स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में आज सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल सिद्धांत विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता केंद्रीय सूचना आयोग के सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने आरटीआई की बारीकियों और पारदर्शिता के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस एक्ट में आप देखेंगे 95% सेटिस्फेक्शन है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने इस एक्ट के महत्व को समझा और आप देखेंगे केंद्र सरकार ने सभी 11 पदों को केंद्रीय सूचना आयोग में भर दिया है। मुख्य सूचना आयोग एक और उसके अतिरिक्त 4 सूचना आयोग जन जनोपयोगी एक्ट मानते हैं। इस अधिनियम का प्रयोग करके लोग अपनी मूलभूत सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चंद्र चारू त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की प्राथमिकताओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि है। सत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के निदेशक, कुल सचिव और आरटीआई अधिकारी शामिल हुए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज ग्वालियर जिले के घाटी गांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शबरी माता मंदिर परिसर से सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खातों में 1836 करोड़ रूपए की मासिक किश्त का सफलतापूर्वक अंतरण किया।
8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई।
लाडली बहना योजना से आर्थिक रूप से सशक्त हुई सुनीता सेन ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।
मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहती थी, मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब ये लाडली बहना योजना चली तो मैंने सोचा इस पैसे से कुछ किया जाए, तो मैंने कुछ महीने पैसे नहीं निकाले, जमा रहने दिए। जब मेरे इकट्ठे हो गए 5-7 महीने के पैसे, तो मैंने सोचा घर पे एक दुकान खोल लूं, कपड़े की कुछ साड़ियां खरीद लाऊं, तो मेरी दुकान चलने लगी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे और पैसे महीने के इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में फिर से सामान ले आती हूँ।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 121.95 करोड़ रुपए की लागत वाले 54 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी जूनियर डॉक्टरों को बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई ये वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। विभाग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना में कही गई बात का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि देश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इस अनिश्चितता को देखते हुए आपूर्ति विभाग ने जनता को इन उत्पादों का सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल द्वारा 14 और 15 मार्च को टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में 2 दिवसीय फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे से 9 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रतलाम और धार में भी लू की स्थिति बनी रही। राजगढ़ के सारंगपुर में कृषि विभाग ने पुलिस और हार्वेस्टर संचालकों के साथ बैठक कर नरवाई प्रबंधन के दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाएं। अशोकनगर में किशोरी बालिकाओं को HPV वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सीहोर के जिला पंचायत सभाकक्ष में कल 14 मार्च को जिला विकास एवं समन्वय समिति दिशा की बैठक आयोजित की जाएगी। खंडवा और आगरमालवा जिले में कल 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।